रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम प्रस्तुत है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के आरंभ में आप सूरह फुसिलत की 30वीं से लेकर 33वीं आयतों तक की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं अब्बास इमाम जुमा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق الله العلي العظيم
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اور پھر اس پر دڑھتا پوروک جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی شوکا کل ہو اور اس سورگ سے پرسن ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سانسارک جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پرلے میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اچھا ہوگی، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم مانگ کرو گے۔ یہ اتینت کشماشیل اور دیاوان ایشور کی اور سے تمہارے آتتھ کا سادھن ہے، اور اس ویکتی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایشور کی اور بلائے، اچھے کرم کرے اور یہ کہے کہ نشچت روپ سے میں اس کے آگیاکاری بندوں میں سے ہوں۔
دوستو، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9620 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ دوستو، ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو صدا کی بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ آج شنیوار ہے، आबान माह की 7, रबीउसानी की 3 और अक्टूबर की 29 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा ईरान भ्रमण। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। शिराज में हुए आतंकी हमलों की निंदा के लिए पूरा ईरान सड़कों पर। विदेश मंत्री का कहना है कि ईरान यूक्रेन और यमन जंग का विरोध करता है। भारत का कहना है कि आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है। इमरान खान लॉन्ग मार्च पर निकले, सरकार परेशान। और अब आप विस्तार से अख्तर अब्बास से समाचार सुनिए। शिराज में धार्मिक स्थल के भीतर हुई आतंकी घटना की भर्त्सना के लिए पूरा ईरान की जनता जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर निकली। राजधानी तेहरान सहित सारे शहरों और कस्बों में लोगों ने जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकाले और अमरीका व ज़ायनी शासन की साजिश और इस साजिश को अमली जामा पहनाने वाले तकफीरी आतंकियों की निंदा की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हम दुश्मनों की हर साजिश के जवाब में और ज्यादा मुत्तहिद होंगे। प्रदर्शनकारी अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, ब्रिटेन मुर्दाबाद, उपद्रवी मुर्दाबाद, दाइशियों का सपना पूरा नहीं होगा जैसे नारे लगा रहे थे। ईरान में एक महीने से जारी हंगामों और उपद्रव के बीच शिराज में स्थित पैगम्बर इस्लाम के वंशज अहमद बिन मूसा शाह चिराग के मजार में आतंकी हमला हो गया, जिसमें 15 ज़ायरीन शहीद और दर्जनों घायल हो गए। इस हमले की निंदा में पूरे ईरान और विश्व स्तर पर की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ, चीन, रूस, ताजिकिस्तान सहित दर्जनों देशों ने आतंकी हमले की निंदा की। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने तुर्की के राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में इस देश के राष्ट्रपति को बधाई दी और बल दिया कि ईरान और तुर्की बहुपक्षीय संबंधों में विस्तार के लिए अपनी क्षमताएं रखते हैं। 29 अक्टूबर को तुर्की का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और वर्ष 1923 को इस देश को तुर्की गणतंत्र घोषित किया गया था। राष्ट्रपति ने अपने तुर्क समकक्ष रजब तैयब अर्दोगान को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि दो स्वतंत्र और एकपक्षीयवाद के विरोधी देशों के रूप में ईरान और तुर्की एक दूसरे के पुराने पड़ोसी देश हैं और दोनों के बीच बहुपक्षीय संबंधों के विस्तार की अपार क्षमताएं पाई जाती हैं। इससे पहले राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने मेडिकल यूनिवर्सिटियों के प्रमुखों से मुलाकात में कहा था कि दुश्मन साइंस के विभिन्न क्षेत्रों में ईरान के विकास को रोकने के लिए देश के शैक्षणिक केंद्रों की गतिविधियों में रुकावट डालना और उन केंद्रों का चैन और सुकून छीनना चाहता है। उन्होंने इस अवसर पर कोरोना नियंत्रण पाने और वैक्सीनेशन के लिए चिकित्सा कर्मियों और मेडिकल कॉलेज व यूनिवर्सिटियों की सफलताओं, ईरान के नागरिकों को दिए गए चिकित्सा इंश्योरेंस, मेडिकल उपकरण और दवाओं की गुणवत्तापूर्ण पैदावार और निर्यात को इस क्षेत्र में विशेषज्ञों और कर्मियों के अथक प्रयासों का परिणाम करार दिया। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कोलबा से टेलीफोनी बातचीत में आपसी रिश्तों और सहयोग की समीक्षा की और साथ ही साफ शब्दों में कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान 8 साल तक थोपी गई जंग का दंश झेल चुका है, इसीलिए यूक्रेन और यमन में होने वाली जंग का विरोध करता है। विदेश मंत्री हुसैन मीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि रूस से हमारे अच्छे संबंध हैं और पहले से ही रक्षा सहयोग चला आ रहा है, लेकिन यूक्रेन जंग के मामले में हमारी रणनीति देशों की अखंडता का सम्मान करने, संघर्षरत पक्षों में से किसी एक को भी हथियार न देने, जंग तत्काल रुकवाने, बेगुनाह जनता के विस्थापन को रोकने पर आधारित है। विदेश मंत्री ने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की विदेश नीति बिल्कुल साफ है और जंग विरोधी उसूल पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमें दोनों देशों के सामरिक विशेषज्ञों की प्रत्यक्ष बैठक की जरूरत है जिसमें इस मुद्दे को हल किया जाए। इस बातचीत में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सामरिक विशेषज्ञों की बैठक होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी दूसरे की राय से प्रभावित होकर अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं करते। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि तेहरान शीघ्र ही अमरीका और कनाडा की ओर से ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के जवाब में इन देशों के लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा ने बुधवार को ईरान के 6 लोगों और 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए थे और उन पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया था, जबकि अमरीका ने भी ईरान की इंटेलिजेंस और IRGC के कमांडरों, जेल वार्डन्स और दूसरे लोगों पर प्रतिबंध लगाने की सूचना दी थी। अमरीका और कनाडा की इन कार्रवाइयों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब सवाल किया गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि वो अमरीका और कनाडा की इन कार्रवाइयों का जवाब उचित देंगे। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि तेहरान शीघ्र ही अमरीका और कनाडा के लोगों और संस्थाओं पर आतंकवाद, आतंकवादियों की जानबूझकर समर्थन, हिंसा और घृणा को हवा देने, दंगों और हिंसक कार्रवाइयों और ईरानी राष्ट्र के अधिकारों का हनन करने के आरोप में प्रतिबंध लगाएगा। ईरान के सेना प्रमुख जनरल मूसवी ने शिराज में हुए आतंकी हमले में अपने माँ बाप और भाई को गंवाने वाले मासूम बच्चे आरतीन सरीदरान के नाम जज्बात में डूबा संदेश भेजा है। जनरल मूसवी ने अपने संदेश में लिखा है, काश आपके माता पिता और भाई की जगह मैं खून में नहाता और तुम्हें यह गम न उठाना पड़ता। जनरल मूसवी ने आगे लिखा कि मेरे बेटे आरतीन, मेरा दिल तुम्हारे दुख के बारे में सोचकर डूब जाता है। काश तुम्हारे दिल के जख्म मेरे सीने में भर जाते और मैं तुम्हें माँ बाप और भाई के गम में तड़पते न देखता। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक के इलाके में से फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध की आंधी उठने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि हालात को बिगाड़ने में गैर कानूनी ज़ायोनी बस्तियों की भूमिका है। मध्य पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति दूत टोड विंसलैंड ने कहा कि फिलिस्तीन में हालात बहुत खराब हैं और वेस्ट बैंक में सुरक्षा हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए विंसलैंड ने कहा कि गैर कानूनी बस्तियों में बसने वाले ज़ायोनियों की हिंसा के चलते वेस्ट बैंक के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि निराशा और आक्रोश के चलते सुरक्षा हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब उन्हें काबू में कर पाना कठिन हो गया है। उनका कहना था कि लंबे समय से बातचीत की प्रक्रिया बंद है जिसकी वजह से हिंसा और बढ़ी। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीनी प्रशासन में प्रतिनिधि रियाज मंसूर ने कहा कि इसराइल फिलिस्तीनी प्रशासन को ध्वस्त कर देने की कोशिश कर रहा है, सुरक्षा परिषद को चाहिए कि उसकी मदद करे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकरोधी प्रतिबंध व्यवस्था उन देशों को आगाह करने के लिए प्रभावी है जिन्होंने आतंकवाद को राज्य द्वारा वित्तपोषित उद्यम बना लिया है। भारतीय विदेश मंत्री ने दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के बावजूद आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है, खास तौर पर एशिया और अफ्रीका में। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने पिछले 2 दशकों में आतंकवाद से निपटने के लिए मुख्य रूप से आतंकवाद रोधी प्रतिबंध व्यवस्था के आसपास निर्मित महत्वपूर्ण संरचना विकसित की है। ये उन देशों को आगाह करने के लिए बहुत प्रभावी रही है जिन्होंने आतंकवाद को राज्य द्वारा वित्त पोषित उद्यम बना लिया है। भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि वो आतंकवाद को मंसूबे के तहत बढ़ावा दे रहा है, वहीं पाकिस्तान भी भारत पर यही आरोप लगाता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के निकट आते ही हर पार्टी अलग अलग तरीके से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। गुजरात में नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरों का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि प्रदेश सरकार ने तुरप का पत्ता फेंक दिया। गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चल दी। गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात मंत्रिमंडल के ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के उद्देश्य से समिति गठित करने को अनुमति प्रदान की है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसे भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक माना जा रहा है, क्योंकि राज्य चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। रिक्त सरकारी पदों को भरने की मांग को लेकर मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित एक रैली में उस वक्त हिंसा शुरू हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने राहगीरों पर लाठियों से हमला करते हुए वाहनों को नुकसान पहुंचाया। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि मारपीट के दौरान घायल हुए लोगों में एक स्थानीय समाचार पत्र के वीडियो पत्रकार भी शामिल हैं। रैली का आयोजन करने वाले फेडरेशन ऑफ खासी जयंता एंड गारो पीपल के अध्यक्ष डंडी होगसिट ने कहा कि मैं दुखी हूं और एक मीडियाकर्मी पर हुए हिंसक हमले के लिए मैं माफी मांगता हूं। आज हमारी ताकत और शक्ति दिखाने का समय नहीं है, लेकिन अगर सरकार युवाओं के मुद्दों का समाधान नहीं करती तो इसे शुरुआत समझा जा सकता है। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा पारित फैसले के कारण अयोग्यता के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्त की घोषणा की गई। ये पूछे जाने पर कि आजम खान को अयोग्य घोषित किया गया है, दुबे ने कहा कि हम एक वर्तमान सदस्य को अयोग्य घोषित नहीं करते हैं, हम केवल संबंधित सीट की रिक्ति की घोषणा करते हैं। अयोग्यता तो अदालत के आदेश के बाद पहले ही हो चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने समर्थकों की भारी संख्या के साथ शुक्रवार को लॉन्ग मार्च पर निकल पड़े। इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। इस मार्च का मकसद सरकार पर तत्काल चुनाव करवाने के लिए दबाव डालना है। लाहौर में इमरान खान के समर्थक दसियों हजार की संख्या में एकत्रित हो गए और अपेक्षा की जा रही है कि इतनी ही संख्या और भी इस लॉन्ग मार्च में जुड़ जाएगी। 380 किलोमीटर का ये लॉन्ग मार्च एक सप्ताह तक चलेगा और इस बीच इमरान खान रुक रुक कर जनसभाएं करेंगे। इमरान खान ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो एक कंटेनर के ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने भारी जनसमूह है जो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे राजनीतिक हिंसा का सख्ती से मुकाबला करेंगे। उन्होंने प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के शौहर पर होने वाले हमले की निंदा की और सुरक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि राजनीतिक हिंसा संसदीय चुनाव से पहले तेजी से बढ़ रही है। जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि पेलोसी के पति पर हमला निंदनीय है, राजनीति में हिंसा के खिलाफ हर किसी को खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो चुका, जिसके पास भी जमीर है वो राजनीति में हिंसा के खिलाफ खुलकर खड़ा हो। यूक्रेन में युद्ध में शामिल होने के लिए 30 लाख रिजर्व सैनिकों के लक्ष्य को पूरा करने के बाद रूस ने और अधिक लोगों की भर्ती को रोक दिया है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगो ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ऑनलाइन बैठक में ये खबर दी है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान में हालिया दिनों में होने वाले दंगों की वास्तविकता से तेहरान के इमाम जुमा द्वारा उठाए गए पर्दे के बारे में।
मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी ने कहा है।
और फिर बात करेंगे फिलिस्तीन में आतंकी इसराइली सैनिकों द्वारा लगातार किए जा रहे अत्याचारों के बारे में,
फिलिस्तीनी इलाकों में बढ़ती हिंसा
और अंत में चलेंगे भारत, जहां कश्मीर में वोटर लिस्ट में होने वाली गड़बड़ियों के आरोपों के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस।
तो सबसे पहले बात करते हैं तेहरान के इमाम जुमा के उस बयान के बारे में कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व में वर्चस्ववाद की योजना ईरान की पहचान को मिटाना और निराशा पैदा करना है। इस संबंध में विस्तार से एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी ने कहा है कि वर्चस्ववादी ईरान में पहचान को मिटाना चाहते हैं और निराशा का वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं। तेहरान के इमाम जुमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी कहते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में वर्चस्ववाद की योजना यह है कि यहां पर पहचान को मिटाया जाए और देश में निराशा का वातावरण उत्पन्न कर दिया जाए। उन्होंने अपने जुमे के खुतबे में कहा है कि अमेरिका का मूल उद्देश्य ईरान की इस्लामी शासन व्यवस्था को गिराना है। ईरान में हालिया उपद्रव के दौरान अमरीकी नेतृत्व में जो कुछ किया जा रहा है उससे तो यही पता चलता है कि वे इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पहले चरण में वे पहचान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद व्यापक स्तर पर सांस्कृतिक युद्ध छेड़ा जा चुका है जो कि बहुत ही जटिल है। इस युद्ध में सोशल मीडिया सहित हर प्रकार के संपर्क के साधनों को हथकंडे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ईरान के विरुद्ध छेड़े गए सांस्कृतिक युद्ध में अब तक अरबों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। हाज अली अकबरी ने कहा है कि इस समय देश के युवाओं को लक्ष्य बनाया जा रहा है। इस बारे में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि वे लोग ऐसी नई पीढ़ी के इच्छुक हैं जो अदूरदर्शी, सती सोच वाली, उत्साहीन, निराशावादी और अविश्वसनीय हो। ईरान के संदर्भ में विश्व वर्चस्ववाद की दूसरी कार्रवाई अशांति उत्पन्न करना है। इसको उन्होंने अपनी कार्यसूची में शामिल कर रखा है। हालांकि इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से ये काम विभिन्न शैलियों में पिछले 4 दशकों से अधिक समय से किया जाता रहा है। हालिया अशांति में पश्चिम ने खुलकर उपद्रवियों का समर्थन किया और अब भी कर रहे हैं। इस काम से उनका लक्ष्य ईरान को अशांत बनाना है। इसी के साथ विश्व वर्चस्ववाद ईरान को अशांत बनाए रखने के लिए आतंकी गुटों, विशेषकर तकफीरी आतंकी गुटों से सहायता ले रहा है। इसका ताजा उदाहरण शिराज नगर में स्थित शाह चिराग के मजार पर नमाज के दौरान लोगों पर हमला करना था, जिसमें बड़ी संख्या में नमाजी शहीद हो गए। इस हमले के बारे में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह रुज़्मा सैयद अली खामेनेई ये कहते हैं कि आग भड़काने वाले दुश्मन के संबंध में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि देश की सुरक्षा प्रणाली और न्यायपालिका का समर्थन करें और हम सब एकजुट रहें।
और अब चर्चा करते हैं फिलिस्तीनी जनता पर अवैध ज़ायोनी शासन के बढ़ते जुल्मों के बारे में। फिलिस्तीन के हालात पर सुरक्षा परिषद में हुई बैठक में बुरी तरह घिरा इसराइल, अपराधों की हुई निंदा, मगर अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं न्यूयॉर्क से IRIB के संवाददाता अली रजबी, हमारे साथी अहमद अब्बास की आवाज में।
فلسطینی علاقوں میں بڑھتی ہنسا اور اسرائیلی سینکوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی ہتیا میں لگاتار ہو رہی وردھی کے درشٹیگت سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد کی بیٹھک ہوئی۔ دو سطروں میں چھ گھنٹے کی بیٹھک میں بحث تو بہت ہوئی، لیکن غیر قانونی شاسن کے سمرتھکوں نے بیٹھک کو کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے دیا۔ ٹور وینسلینڈ، جو مدھیہ پور میں سنیکت راشٹر سنگھ کے شانتی دوت ہیں، زائنی شاسن سے مانگ کی کہ فلسطینیوں کو ان کے گھر بار سے نکالنے اور انہیں وستھاپت کرنے کا سلسلہ بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ کئی دشکوں سے جاری زائنی شاسن کے قبضے کے خلاف فلسطینیوں کی نراشا اور آکروش بالکل صاف نظر آتا ہے۔ البتہ وینسلینڈ نے اسرائیل کے اپرادھوں کی نندا نہیں کی، مگر اتنا کہا کہ زائنی فلسطینیوں کے گھر دھوست کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے نرمان کا لائسنس نہیں لیا گیا، جبکہ کسی بھی فلسطینی کے لیے اسرائیل سے اس طرح کا پرمیشن لینا اسمبھو ہے۔ اس بیٹھک میں ایران کے راجدوت نے کہا کہ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2022 میں بڑی سنکھیا میں فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور اس پہلو سے 2006 کے بعد یہ سب سے برا سال ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے اپرادھ گنوائے۔
74 years
فلسطینیوں کی ہتیا، انہیں ان کے گھروں سے نکالنا اور فلسطینیوں کے خلاف انیک طرح کی اپرادھک کاروائیاں کرنا، یہ اسرائیل کی کرتوتیں ہیں جو پچھلے 74 سال سے جاری ہیں۔ یہ حرکتیں سارے انتراشٹریہ قانونوں کا الگھن ہے۔ فلسطینیوں کو سرکشا پریشد کے سمرتھن کی ضرورت ہے۔ ایران کے راجدوت نے کہا کہ فلسطینیوں کو پورا ادھیکار ہے کہ اسرائیلیوں کے حملوں کے جواب میں آتم رکشا کی کارواہی کریں۔ آئرلینڈ کی راجدوت نے بھی قبضے والے فلسطینی علاقوں کے حالات کو بے حد چنتا جنک بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اس بات کی گہری چنتا ہے کہ اسرائیل بہت زیادہ طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پترکار شیرین ابو عاقلا کے قتل کی، ان کا کہنا تھا کہ شیرین ابو عاقلا کی ہتیا کا معاملہ ایک گمبھیر وشے ہے جس کی سوتنتر اور نشپکش جانچ بہت ضروری ہے اور ہم اس پر زور دیتے ہیں۔
The killing of journalist Shireen Abu Akla.
سنیکت راشٹر سنگھ کے مانوادھیکار ہائی کمیشن کی رپورٹ کے انوسار اس سال اسرائیل نے ویسٹ بینک میں ہی 118 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جن میں 26 بچے اور 5 مہیلائیں شامل ہیں۔ نیو یارک سے IRIB کے لیے علی رجبی کی رپورٹ۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت پرشاست کشمیر میں ووٹر لسٹ میں ہو رہی دھاندلی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ وہیں کشمیر کے سب سے بڑے دھارمک نیتا مولانا عباس انصاری کے ندھن پر ہونے والی شوک سبھاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں شری نگر سے ہمارے سنواد داتا سپت محمد حسن۔
جموں کشمیر پیپلز کانفرنس، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے نئی دہلی کی ادھیکشتا حاصل ہے، نے آج ایک سنواد داتا سمیلن میں کہا ہے کہ سری نگر کے کئی کانسٹیچوئنسیز میں غیر راجی کے ناگرکوں کو متدان لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت گمبھیر ایشو ہے۔ سری نگر میں پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے پیپلز کانفرنس کے مہا سچیو بشارت بخاری نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لسٹ ہمارے سامنے آیا ہے اور جس طرح سے اس میں غیر ریاستی لوگوں کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، وہ جموں کشمیر کے ناگرکوں کو سویکار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار نئی دہلی کو یہ سمجھانے کا پریاس کیا کہ وہ ایسی ایکسرسائز نہ کریں، پرنتو انہوں نے یہ سویکار کیا کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ اس اوسر پر بشارت بخاری نے کہا،
چیف لائے، آج ہم نے سوچا آپ سے چند باتیں کریں۔ معاملہ ایک حساب سے بڑا گمبھیر ہے، کیونکہ اگر واقعی میں یہ صحیح ہے جو ہم کہنے جا رہے ہیں تو انتہائی گمبھیر بن سکتا ہے یہ معاملہ۔ وہ ایسا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، ایک کاغذ کا پلندہ ہے، اس میں کوئی کل ملا کر 1381 نمبر ہے، اس پہ سیریل نمبر ہے۔ یہ ہمارے خورشید عالم صاحب ہیں، انہوں نے 2014 کا الیکشن لڑا خانیار سے، اور اس وقت کی الیکشن کے بعد شاید انہوں نے ایک ایکسرسائز کی اپنے طور پہ، اور یہ دیکھا کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو خانیار حلقہ انتخاب میں، تب کے شاید آج بھی اسی میں آئیں گے، تب کے حلقہ انتخاب میں 1381 ایسے افراد ہیں جن کا ووٹ درج تھا لیکن ایگزسٹ نہیں کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ، جو انہوں نے اس وقت ایکسرسائز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے شاید کیس بھی کر لیے، ریپرزنٹیشن بھی دی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اگر واقعی میں ایسا صحیح ہے اور آج کل ایک پروسیس چل رہا ہے، تو اس پروسیس کے ناطے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار سے ہم نے یہ ہم ڈی سی سری نگر اعجاز اسد صاحب سے بھی ملے, اکٹھے ہم نے ان کو ایک کاغذ دے دیا, اور بھی ہم جو الیکشن اتھارٹیز ہیں ان کو بھیج رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک یہ جو نان ایگزسٹنگ ٹب تھے, کیا یہ آج بھی آج کے ووٹر فہرست میں شامل ہیں؟ اگر شامل ہیں تو اس وقت جب یہ شامل کیے گئے یا رکھے گئے کس نے رکھے, کس نے رکھوائے, اور اگر ان میں سے کسی نے اس نام پر کسی نے تب ووٹ ڈالا ہے تو اس ووٹ کا امپیکٹ اس وقت کے الیکشن پہ کیا پڑا ہوگا, وہ بھی عیاں ہو جائے گا اس چیز سے. ہمیں اعتبار اس پہ اس لیے ہے کیونکہ جو دوسرا ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 514 آپ کیوں بھی یہ کاپی دیں گے, ہم 514 ایسے افراد شامل ہیں ووٹر فہرست میں خانیار کے جو دو جگہوں پہ ووٹ ڈالتے ہیں خانیار میں. جیسے ایک شخص کا نام نہیں لوں گا میں, وہ رشی مالا 44 ہے, اس کے بعد وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1019, اور پھر لونمالا میں بھی درج ہے وہاں پہ نمبر ہے 691. تو یہ 514 جو ہیں یعنی 514 کا ڈبل ہے.
ادھر کشمیر کے ایک دگج دھارمک نیتا مولانا محمد عباس انصاری کے دیہانت کے بعد سوگ سباہوں کا جو آیوجن ہے وہ اب بھی جاری ہے, اور ایک بہت بڑی سوگ سبھا آیوجت ہوئی جس کے ادھیکشتا اسلامی جمہوریہ ایران سے آئے ہوئے ایک گیسٹ اوغائی سید مہدی زادہ علی موسوی نے کی. انہوں نے اپنے بھاشن میں لوگوں پر بل دیا کہ وہ ایکتا کے ساتھ آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں مولانا محمد عباس انصاری نے اپنے دیہانت سے پہلے جو کاریہ کیا ہے اس کو آگے چلانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا عباس انصاری نے اپنی پوری زندگی مسلم ایکتا کے لیے صرف کی ہے, میں ان کے پتروں سے بھی یہی بنتی کرتا ہوں کہ وہ اس مشن کو جاری و ساری رکھیں. سبت محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
دوستوں, راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے. उज्ज्वल भविष्य.
दोस्तों, कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य की एक अन्य कड़ी को लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हैं स्वाति और सैयद मेसाम का सलाम स्वीकार कीजिए. आज भी हम इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान में शांति और सुरक्षा की स्थिति की चर्चा करेंगे.
پچھلے کارکرم میں ہم نے اسلامی کرانتی کے بعد ایران میں کرانتی ورودھی اور آتنکوادی گٹوں کی گتیویدھیوں اور دیش کو اشانت کرنے کے پریاسوں پر ایک نظر ڈالی تھی. اسلامی کرانتی کی سفلتا کے ترنت بعد ایران کو جہاں ودیشی طاقتوں سے گمبھیر چنوتی مل رہی تھی, وہیں دیش کے بھیتر کچھ ایسے گٹ سکریہ ہو گئے تھے جو کرانتی کو اسفل بنانے کے ساتھ ہی دیش کو توڑنے کی سازش رچ رہے تھے. لیکن اسلامی گڑتنتر ایران نے امام خمینی کے نیتتو میں ان سمست سازشوں پر پانی پھیر دیا اور اسلامی ویوستہ کی نیو کو مضبوط کیا. اسلامی کرانتی کی مہتوپورن اپلبدھیوں میں سے ایک ایرانی راشٹر کے ہیتوں کی رکشا اور ناگرکوں کے لیے شانتی اور سرکشا کی استھاپنا ہے.
جیسا کہ ہم نے الیکھ کیا تھا کہ سرکشا کے وبھن آیاموں میں سے ایک مہتوپورن آیام راجنیتک سرکشا ہے. राजनीतिक सुरक्षा का संबंध देशों की संगठनात्मक स्थिरता, सरकारी प्रणालियों और उन विचारधाराओं से है जो सरकारों और राज्यों को वैध बनाती है. इस्लामी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी राजनीतिक लोकप्रियता है. इस्लामी व्यवस्था प्रणाली की स्थिरता का कारण यह है कि इस्लामी क्रांति की सफलता के मुख्य कारणों में से एक क्रांति से पहले राजशाही शासन का कमजोर होना और विदेशी सरकारों पर निर्भर होना था. लेकिन इसके विपरीत इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था ने स्वतंत्र और स्वाधीन नीति अपनाई और आम लोगों को अपनी ताकत बनाया.
ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता वास्तव में राजशाही व्यवस्था की समाप्ति और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना थी. समस्त साजिशों के बावजूद ईरानी जनता ने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर इस्लामी क्रांति का समर्थन किया और उसकी बुनियादों को मजबूत किया. اسلامی کرانتی کی سفلتا کے پہلے 3 وشوں کے دوران ویرودھیوں نے ہر استر پر ہر وہ قدم اٹھایا جس سے کسی بھی شاسن کا پتن کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دیش میں الگاؤوادی گٹوں کو وشو کی 2 مہاشکتیوں دوارا سمرتھن دیا گیا، پرتبندھ لگائے گئے اور ورشٹھ نیتاؤں اور ادھیکاریوں کی ہتیائیں کر کے تختہ پلٹ کرنے کے پریاس کیے گئے۔
समस्त घटनाक्रमों और परिवर्तनों के बावजूद पिछले 4 दशकों के दौरान ईरानी जनता ने जिस शांति और सुरक्षा का स्वाद चखा है, क्रांति से पहले उसका कोई नामोनिशान तक नहीं था। क्रांति से पहले शाही हुकूमत के दौरान लोगों की जान और उनके माल को हमेशा खतरा रहता था, लेकिन क्रांति के बाद देश में ऐसा वातावरण बना कि लोग एक दूसरे की जान और माल का सम्मान करने लगे। पहली बार लोगों ने सही माने में शांति के सुख का आनंद लिया और यह जाना कि इंसान के जीवन में शांति और सुरक्षा का वही महत्व है जो भोजन और जल का है। अगर इंसान की जान और इज्जत ही खतरे में रहे तो जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं और जीवन नरक बन जाता है।
हालांकि इस्लामी क्रांति से पहले शाही शासनकाल में खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ शाही परिवार और उसके दरबारियों की सुरक्षा के बारे में सोचती थी और योजना तैयार करती थी। यही वजह है कि क्रांति से पहले लगभग 200 वर्षों के दौरान देश में कोई राष्ट्रीय और लोकप्रिय सरकार के न होने से उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक कई हिस्से देश से अलग हो गए। शाही शासन का मानना था कि विश्व की महाशक्तियों पर निर्भर रहकर और उनका समर्थन हासिल करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खरीदा जा सकता है। दरअसल इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले सरकारों ने यह मान लिया था कि वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा नहीं कर सकती हैं। शाही शासन को सिर्फ इस बात पर गर्व था कि उसे एक क्षेत्र में अमेरिका का थानेदार होने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन इन 200 साल के अनुभव ने हर बार ये साबित किया कि महाशक्तियां सिर्फ उस वक्त तक मौजूदा सिस्टम का समर्थन करती हैं जब तक वो उनके हित में होता है, और इस समर्थन के बदले वो उनसे अत्यधिक विशेषताएं प्राप्त करती हैं। लेकिन जब उनके हित खतरे में बढ़ते हैं या उन्हें लगता है कि वो मौजूदा सिस्टम को बचाने में असमर्थ हैं तो तुरंत चोला बदल लेती हैं।
ईरान की इस्लामी क्रांति ने इमाम खुमैनी के नेतृत्व में जनता के समर्थन से पिछले 4 दशकों के दौरान न केवल देश में शांति और सुरक्षा की स्थापना की बल्कि 8 वर्षीय युद्ध समेत विभिन्न संकटों के दौरान देश की संप्रभुता और अखंडता को सुरक्षित रखा। पर पहली बार युद्ध में देश की एक बलिष्ठ जमीन पर भी दुश्मन का कब्जा नहीं होने दिया। ईरानी युवाओं ने रक्षा समेत समस्त क्षेत्रों में इस विश्वास को जिंदा रखा कि हम कर सकते हैं। यही विश्वास ईरानी राष्ट्र के विकास की बुनियाद बन गया और आज देश प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है। आज ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति है जिसके खिलाफ दुश्मन चाहे जितनी साजिशें रच लें लेकिन उसकी तरफ मैली आंखों से नहीं देख सकता।
क्षेत्रीय स्तर पर आज ईरान इतना शक्तिशाली बन गया है कि सीरिया और इराक में सीधे उपस्थित होकर दाइश जैसे आतंकवादी गुटों का न सिर्फ मुकाबला करता है बल्कि उन्हें नष्ट कर देता है। कई लोगों का मानना है कि अगर ईरान सीरिया और इराक के संकटों में भूमिका अदा नहीं करता तो ये संकट विकराल रूप धारण कर लेते। ईरान ने ये सभी उपलब्धियां ऐसी हालत में हासिल की हैं कि जब उसे पिछले 4 दशकों से विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों का सामना रहा है। इसके अलावा इस्लामी क्रांति के प्रभाव में सीरिया, इराक, लेबनान, फिलिस्तीन और यमन में प्रतिरोधी गुटों का गठन हुआ और खतरा ईरान की सीमाओं से हटकर दुश्मन की सीमाओं तक चला गया। दुश्मन जानता है कि अगर वो कोई गलती करेगा तो प्रतिरोधी शक्तियां उसे मुंह तोड़ जवाब देंगी। इस प्रकार ईरान की रक्षात्मक शक्ति अद्वितीय बन गई है جس کے کارن اسرائیل کے اکسانے کے باوجود ٹرمپ جیسا ایران کا دشمن اس پر حملے کا ساہس نہیں کر سکا۔
ایران میں آج لگ بھگ سبھی کھیتروں میں شانتی اور استھرتا قائم ہے۔ دیش کے سب سے دور دراز والے علاقوں میں بھی سبھی ورگوں، وشیش روپ سے مہیلائیں اور لڑکیاں پورن روپ سے سرکشت ہیں اور وہ اکیلے جہاں چاہیں یاترا کر سکتی ہیں۔ پورب سے لے کر پشچم تک اور دکشن سے لے کر اتر تک ایران پورن روپ سے سرکشت ہے۔ حالانکہ کبھی کبھی آتنکوادی اور اسماجک تتو سماج میں سرکشا کا ماحول پیدا کرنے کا پریاس کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف تورت گمبھیر کاروائی ہوتی ہے۔ ایران میں سرکشا ویوستھا کو دنیا کے سب سے سرکشت کھیتر میں استھت فرانس جیسے دیش کی سرکشا ویوستھا سے اگر تلنا کریں تو دیکھیں گے کہ اس دیش میں ایک چوتھائی سے زیادہ مہیلائیں اکیلے گھر سے نکلنے میں ڈرتی ہیں، کیونکہ انہیں اپمانت ہونے، چھیڑ چھاڑ اور حملے کا ڈر رہتا ہے۔
اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی درشٹی میں سرکشا کا مہتو بہت ادھک ہے اور دھارمک درشٹی سے یہ واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں راشٹریہ سرکشا کسی بھی راشٹر کے لیے سب سے واجب چیز ہے، کیونکہ اگر راشٹریہ سرکشا نہیں ہوگی تو سرکار کام ہی نہیں کر سکے گی۔ نرماڑ کے لیے ایک اینٹ دوسری اینٹ پر نہیں رکھی جا سکے گی۔ اگر دیش میں اتھل پتھل ہوگی تو دیش کی کسی سمسیا کا سمادھان نہیں نکل سکے گا۔ ان کے درشٹی کوڑ میں راجنیتک ویوستھا میں سرکشا کا استھان بہت اونچا ہے، اس حد تک کہ سماج کے اتھان کے لیے یہ پہلی شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں سرکشا ایک بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں بھی شانتی اور سرکشا کا ذکر ہے۔ کسی بھی سماج کی پرگتی کے لیے شانتی اور سرکشا کی استھاپنا ضروری ہے۔
ورشٹھ نیتا کا ماننا ہے کہ ایران کی پرگتی کا راز بھی سرکشا میں ہے۔ سرکشا کے بنا کوئی بھی دیش اپنی سمسیاؤں کا سمادھان نہیں نکال سکتا۔ شکشا، روزگار، ارتھ ویوستھا، نرمان اور باقی سمست کھیتروں میں شانتی اور سرکشا کی بھومیکا ادویتیہ ہے۔ شانتی اور سرکشا کے لیے سب سے مہتوپورن چیزوں میں سے ایک راشٹریہ ایکتا ہے۔ اسی لیے اسلامی کرانتی کے سنستھاپک امام خمینی اور ان کے اتراधिकारी اور اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا ہمیشہ راشٹریہ ایکتا اور ایک جٹتا پر زور دیتے رہے ہیں۔ ورشٹھ نیتا کا ماننا ہے کہ اسلامی کرانتی کے برکت سے دیش میں ایکتا اتپن ہوئی ہے۔ ایکتا سماج میں استھرتا اور پرگتی کا کارن ہے۔ ایکتا کے نعرے کے ساتھ ایران نے بڑی بڑی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔ بھوشیہ میں ایرانی جنتا ایک جٹ رہ کر اپنے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتی رہے گی۔
تو دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں سماپت ہوا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔
ایران بھرمڑ۔
دوستو، کارکرم ایران بھرمڑ کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہر دادی اور احمد عباس کا سلام سویکار کیجیے۔
شتو، آج ہم لواسانات نگر کے بارے میں چرچا کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کارکرم میں
ہم نے آپ کو تہران پرانت کے شمیرانات نگر اور تجریش کھیتر کے بارے میں بتایا تھا۔ ہم نے آپ کو تجریش میں موجود امام زادہ صالح کے مقبرے کے بارے میں بھی وستار سے بتایا تھا۔ آج ہم تہران پرانت کے ایک انیہ نگر لواسانات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔
ایران ایسا دیش ہے جو اپنی وشیش بھوگولک استھتی کے کارن پہاڑوں، جنگلوں، چراگاہوں، ندیوں، جھرنوں، راشٹری ادیانوں اور وبھن پرکار کے پراکرتک درشیوں سے سمپن ہے۔ دوسری اور سنسکرتی، سبھیتا اور واستو کلا کی درشٹی سے اس بھومی کی پراچینتا نے اسے وشیش سمردھی پردان کر دی ہے۔ اس سمے تہران کی آبادی 1 کروڑ سے ادھک ہے۔ سوابھاوک روپ سے اتنی بڑی آبادی کی آواجائی کے کارن ٹریفک اور پردوشن کی سمسیا پیدا ہوتی ہے۔ اس پریشانی کے باوجود البورز پہاڑ کے دامن میں استھت ہونے اور شہر کے آس پاس ہرے بھرے میدانوں کے کارن تہران مہانگر دنیا کے کئی بڑے شہروں سے ادھک مہتو کا سوامی ہے۔
سندر میدانی علاقے، ادھک آبادی اور شور شرابے والے اس شہر کا ایک آکرشن بھی انہی چیزوں میں نہیں تھے۔ یہی کارن ہے کہ جب بھی کوئی پریٹک تہران کی یاترا کرتا ہے تو وہ یادگار کے روپ میں تہران کے نکٹورتی علاقوں کا الیکھ ضرور کرتا ہے۔ تہران کے لوگوں کے بیچ کافی پرانے سمے سے یہ پرچلن رہا ہے کہ وہ سپتاہانت کی چھٹیاں انہی سندر نکٹورتی علاقوں میں گزارتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ ماتر تھوڑی سی دوری طے کر کے شہر کے آس پاس اونچے علاقوں تک سرلتا سے پہنچا جا سکتا ہے۔ ایسے آکرشک کھیتروں کی یاترا کر کے تر و تازہ ماحول میں شہر کی تھکن اتاری جا سکتی ہے۔ تہران پرانت کی اتری سیما پر البرز کے پہاڑی آنچل کی اونچائی 1500 میٹر ہے جو اس پرانت کے پشچموتر تک پھیلا ہوا ہے۔ جیسے جیسے تہران پرانت کے پوروی بھاگ کی اور ہم بڑھتے ہیں ویسے ویسے البرز پروت شنکلا کے پہاڑوں کی اونچائی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم اس کے سب سے اونچے حصے تک پہنچ جاتے ہیں۔
دوستو، اب ہم ایران کے وبھن کھیتروں کی سیر کے انترگت لواسانہ چل رہے ہیں، جس کو عام بول چال میں لواسان کہا جاتا ہے۔ اس کھیتر کی گڑنا تہران کے مہتوپورن ایون پراکرتک سوندر سے سمپن کھیتر کے روپ میں ہوتی ہے۔ یہاں کی جلوایو بہت سہانی ہے، یہاں پر بہت سے پراکرتک آکرشن پائے جاتے ہیں۔ یہ پورا کھیتر ہرا بھرا ہے، یہی کارن ہے کہ ایران کے وبھن کھیتروں سے لوگ لواسان میں پرکرتی کا آنند لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ لواسان راجدھانی تہران کے نکٹ استھت ہے۔ تہران سے ماتر 20 منٹ میں یہاں پر پہنچا جا سکتا ہے۔ تہران کے بہت سے لوگوں نے یہاں کی پراکرتک سندرتا کو دیکھتے ہوئے گرمیاں بتانے کے لیے اپنے ویلا بنوائے ہیں۔ لواسان کی سندرتا اس کے اتری کھیتر سے آرمبھ ہوتی ہے جو لتیان ڈیم پر جا کر سماپت ہوتی ہے۔ لتیان ڈیم کو جاجرود نامک ندی کے روپ پر بنایا گیا ہے۔ یہ باندھ لواسان کے دکشن میں استھت ہے۔ دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے لواسان آتے ہیں۔
لواسان میں رہنے والے لواسانی لہجے میں فارسی بولتے ہیں۔ ان کا یہ لہجہ پرانے تہرانی لہجے جیسا ہے۔ لواسان کے کچھ کھیتروں میں تاتی بھاشا میں بھی بات کی جاتی ہے جو پراچین ایرانی بھاشا ہے۔ وشیش بات یہ ہے کہ یہ بھاشا ایران کے البرز پروت شنکلا کے آنچل والے کھیتروں میں پرچلت ہے۔ حالانکہ لواسان میں وبھن جاتیوں کے آگمن اور وہاں پر ان کے بس جانے کے کارن اب لوگ پراچین لہجے میں بات نہیں کرتے بلکہ وہ آدھونک فارسی میں وارتا کرتے ہیں۔ حالانکہ لواسان میں ویلا اسٹائل میں بہت سے بنگلے اور گھر بنے ہوئے ہیں، کنتو یہاں پر اب بھی بہت سے استھانوں پر پتلی پتلی گلیاں ہیں جن میں پیڑ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ادھکتر اخروٹ اور سیب کے پیڑ پائے جاتے ہیں۔ لواسان کے استھانیہ لوگوں کا پیشہ آرمبھ سے ہی باغبانی اور کرشی رہا ہے۔ یہاں پر اخروٹ، سیب اور چیری ادھک ماترا میں پیدا ہوتے ہیں۔
دوستو، اب ہم آپ کو لواسان کے اتہاس کے بارے میں سنکشپت روپ میں بتانے جا رہے ہیں۔ لواسان نگر کو لگ بھگ 5000 ورش پرانا نگر بتایا جاتا ہے۔ ان نگر کے ارد گرد موجود ٹیلوں پر کی جانے والی کھدائی میں ایسے بہت سے چن ملتے ہیں جو لواسان کے اتی پراچین ہونے کی پشٹی کرتا ہے۔ یہاں پر موجود پراچین ٹیلوں میں شورکاب، ناظم آباد، کھرسنگ، حسارک اور اسی پرکار کے کئی انیہ ٹیلوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان پراچین ٹیلوں میں حسارک ٹیلا ادھک مشہور ہے۔ یہ ٹیلا پرائدویپ کی بھاتی ہے۔ حسارک ٹیلا پورب، پشچم اور دکشن تین دشاؤں میں پانی سے بھرا ہوا ہے۔ کیول اتری دشا سے اس پر جایا جا سکتا ہے کیونکہ وہیں پر سوکھا راستہ پایا جاتا ہے۔ حسارک ٹیلا 230 میٹر لمبا، 50 میٹر چوڑا ہے۔ اس کی اونچائی 30 میٹر کی ہے۔
पुरातन विभाग की टीमों द्वारा की गई खुदाई से यहाँ पर हाथों के बने मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो मटमैले काले और भूरे रंग के हैं। ये हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन इस क्षेत्र की प्राचीनता की गाथा सुनाते हैं। पुरातन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रजा वलीपुर बताते हैं कि हिसारक टीले का संबंध चालकोलिथिक अर्थात ताम्रपाषाण काल से है। ये वो काल था जब प्राचीन काल में हथियार और औजारों के निर्माण में तांबे का भी प्रयोग होने लगा था। इस काल में लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी थी और लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए जानवरों का प्रयोग करने लगे थे। ये काल ईसा पूर्व लगभग 4 से 5 शताब्दियों पुराना है। ईरान की राजधानी तेहरान तथा कज़्मीन नगरों के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक काल से संबंधित 28 क्षेत्रों का पता चला है।
अब जबकि आप लवासान के प्राचीन इतिहास से किसी सीमा तक अवगत हो गए हैं तो अब उचित है कि हम यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य पर एक दृष्टि डालते हैं। यहाँ के प्राकृतिक और आकर्षक क्षेत्रों में से एक दश्ते हवीज है जिसको अंग्रेजी में कैरेट प्लेन कहा जाता है। दश्ते हवीज लवासान के अफजे नामक गाँव के पास स्थित है। अगर हम तेहरान से इस सुंदर क्षेत्र तक जाना चाहते हैं तो हमें यहाँ से पूर्वोत्तर में 46 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये खूबसूरत मैदान समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस जगह की जलवायु बहुत ही अच्छी और सुखद है। इस क्षेत्र को ऐतिहासिक दृष्टि से भी विशेष महत्व हासिल है। ऐतिहासिक किताबों में मिलता है कि सफवी शासन काल में दश्ते हवीज उस दौर के राजकुमारों के शिकार का स्थल हुआ करता था। कहते हैं कि इस जगह का नाम कैरेट प्लेन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग गाजर की खेती किया करते थे।
दश्ते हवीज या कैरेट प्लेन को तुलनात्मक रूप में गर्म जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है, इसीलिए गर्मियों में यहाँ पर आने का सुझाव नहीं दिया जाता। पतझड़ और सर्दी के मौसम में ठंड होने के बावजूद यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी होती है। जाड़े के मौसम में यहाँ पर विंटर गेम खेलने का भी चलन है। अपनी तमाम विशेषताओं के बावजूद दश्ते हवीज जाने का सबसे उचित समय बहार या बसंत का मौसम है। उस समय यहाँ पर चारों ओर हरियाली दिखाई देती है जो मनुष्य को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये वो समय होता है जब प्रकृति नया परिधान पहनती है।
दोस्तों, लवासान में एक मशहूर गार या गुफा भी है। ये गुफा अब एक म्यूजियम के रूप में मौजूद है। इसका नाम है वजीरी केव म्यूजियम। ये गुफा लवासान नगर के बाद कोंदे उलिया नामक गाँव के पास मौजूद है। गुफा रूपी इस म्यूजियम को ईरान के मशहूर शिल्पकार नासिर हुशमंदी वजीरी ने अपने खर्चे से बनाया है। इस म्यूजियम को सन 2005 में बनाया गया था। 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में पहले इस म्यूजियम को तैयार करने में 6 वर्षों का समय लगा था। ये बात पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है कि वजीरी के म्यूजियम ईरान में पाए जाने वाले म्यूजियम से बहुत भिन्न है। इसको निकट से देखने से मनुष्य को एक विशेष अनुभव हासिल होता है।
इसके प्रवेश का द्वार मनुष्य को बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। आपको यहाँ हर ओर से गुफा तो दिखाई देगी किंतु बीच में वहाँ पर हाथों के बने हुए स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे। گفا میں دیواریں بنا کر 8 دالان بنائے گئے ہیں۔ اس کے پرویش دوار پر مہان یودھا رستم کی ایک بہت ہی شاندار مورتی بنی ہوئی ہے۔ رستم کی اسٹیچو کو اس پرکار سے بنایا گیا ہے کہ مانو پوری گفا کو اس نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہو۔ دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، آپ سے انمتی چاہتے ہیں۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا، اور اب سمے ہو چکا ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کے سارانش کا۔ شیراز میں آتنکی حملوں کی نندا کے لیے پورا ایران سڑکوں پر اتر آیا ہے۔ ودیش منتری کا کہنا ہے کہ ایران یوکرین اور یمن جنگ کا ورودھی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ آتنکواد کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور عمران خان لانگ مارچ پر نکل پڑے ہیں، جس سے سرکار کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ دوستوں، ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو سدا کی بھانتی پسند آیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اختر عباس اور ساتھیوں کا
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.